सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिण्णये जिनेण मिं वेयण महाहियारं विविहियारं परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित दुबला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने सहसेन आचार्य के उपदेश अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये जो 12वीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार के पश्चात द्वितीय चुलिका चल रही है और उसमें षटस्थान जो षटस्थान पतित वृद्धि की बात चल रही है अपनी। पहले हमने अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, ये सभी की हमने विस्तार से चर्चा की थी। एक एक के बाद उसको कहा था अनंत उपनिधा। अब परंपरा उपनिधा की बात चल रही है तो उसमें आगे आगे वाला स्थान निकालने के लिए जघन्य स्थान के तुलना में कितना मिलाना पड़ेगा, जितना मिलाना है उसको कहेंगे वो प्रक्षेप। तो अनंतवा भाग मिलाना है तो उसके लिए अनंत का प्रमाण है जीव राशि। जघन्य स्थान जब कहते हैं तो विशिष्ट मैक्सिमम जो वहाँ का अनुभाग है, अविभाग प्रतिच्छेद, वो तो बहुत बड़ा अनंत है, उससे जीव राशि वाले अनंत से भाग देना, जो संख्या आएगी वो मूल राशि में मिला देना, उसको कहते हैं प्रक्षेप। जघन्य स्थान को जीव राशि से डिवाइड करने पर जो संख्या आएगी उसको कहते हैं प्रक्षेप। तो जघन्य स्थान से फिर आगे वाला अनंत भाग वृद्धि का जो पहला स्थान है उसके लिए एक प्रक्षेप मिलाना पड़ता है। अनंत भाग वृद्धि के दूसरे स्थान के लिए दो प्रक्षेप मिलाना पड़ते हैं, परंतु जो एक बार अनंत भाग वृद्धि हुई है उसका भी अनंत भाग बढ़ेगा ना, तो जो प्रक्षेप बढ़ा उसका भी अनंत भाग उसके साथ और मिलाना, तो उसको कहते हैं पिशुल। तीसरे स्थान के लिए एक प्रक्षेप और बढ़ेगा, वो तीसरा स्थान यानी द्वितीय अनंत भाग वृद्धि का तृतीय स्थान, और उसमें फिर वो एक कम यानी तीन तीसरा स्थान है ना, उसमें से एक कम करना, तो दो का संकलन धन कितना आता है, संकलन 1+2=3, तो दो प्रक्षेप और तीन पिशुल हो जाएगी, और फिर वो पिशुल का भी अनंत वा भाग जिसको हम पिशुल कहते हैं वो एक इसमें मिला देना। पिशुल कहो। तो इस तरह से आगे आगे वो जो जितना हम मिलाते हैं वहां पर, तो उसका उन्होंने प्रमाण बताया कि जघन्य स्थान डिवाइडेड बाय जीव राशि इज इक्वल टू प्रक्षेप। प्रक्षेप को जीव राशि से भाग देते हैं तो संख्या आती है पिशुल की, पिशुल को जीव राशि से भाग देंगे तो पिशुल, फिर पिशुल को जीव राशि से भाग देंगे तो चूर्णिका, उसको जीव राशि से भाग देंगे तो चूर्णिका। इस तरह से आगे आगे वाले भी स्थान आएंगे, उसके नाम भी उन्होंने कल बताए थे, 162 पेज, हाँ इसी पृष्ठ पर जहाँ अभी हमने पढ़ना है 162 पृष्ठ पर। तो क्रम से कौन कौन, तो प्रक्षेप, पिशुल, पिशुला पिशुल, फिर चूर्णिका, चूर्णा चूर्णिका, उसके बाद भिन्न, भिन्ना भिन्न, छिन्न, छिन्ना छिन्न, त्रुटित, त्रुटिता त्रुटित, दलित और दलिता दलित, आदि यानी आगे भी समझना। तो जितने संख्या में हमें जाना है, विशिष्ट संख्या निकालनी है, विशिष्ट अनंत भाग वृद्धि की संख्या निकालनी है, तो वहाँ पर प्रक्षेप कितने मिलाने, तो प्रक्षेप एक आदि क्रम से जितना वह स्थान है उतने तो प्रक्षेप मिलाने, जो स्थान है उसको हम गच्छ कहेंगे, तो गच्छ प्रमाण तो प्रक्षेप मिलाने। पिशुल संकलन स्वरूप से यानी गच्छ माइनस वन का संकलन निकालना उतने तो पिशुल लेने, पिशुला पिशुल दो घाटी गच्छ का दो बार संकलन करना उसके पिशुला पिशुल उतने लेना। चूर्णिका कितने लेना, तो तीन कम गच्छ उसका तीन बार संकलन करना। चूर्णिका चूर्णिका में चार कम गच्छ का चार बार संकलन करना। भिन्न जो है वो पांच कम गच्छ से पांच बार संकलन करना। भिन्ना भिन्न वो छठे बार है ना, तो छह कम करना उसमें से गच्छ में से और उसका छह बार संकलन करना। उसी प्रकार आगे भी एक एक कम करना गच्छ में से और उतना एक एक संकलन में एक एक बढ़ा देना, उतनी बार संकलन बढ़ाना। जिस किसी स्थान का संख्या निकालनी तो यही मेथड है। अब यहां से पढ़ेंगे हम इनके लाने का सूत्र। यहां तक हमने कल पढ़ा था ना, अभी इस सूत्र को पढ़ेंगे। अभी हम जो ऊपर लिखा है सूत्र दो नंबर का, एकोत्तर परवृद्धो रूपाध्यायी भाजितश्च पदवृद्धि गच्छ संपात फलम समाहत सन्निपात फलम। उसका अर्थ एक एक अधिक होकर पद प्रमाण वृद्धिंगत गच्छ को, पद प्रमाण वृद्धि को प्राप्त हुए। क्या कहते हैं पद, पद कहो या गच्छ, वृद्धिंगत गच्छ, गच्छ कहो पद को एक ही अर्थ में आते हैं। तो जितनी बार वृद्धि हुई है उसको यहाँ पद या गच्छ कहेंगे। तो पद प्रमाण वृद्धि को प्राप्त हुए एक आदि अंकों से भाजित करने पर संपात फल अर्थात एक संयोगी भंगों का प्रमाण आता है। इनको परस्पर गुणित करने से सन्निपात फल अर्थात द्विसंयोगी आदि भंग आते हैं, यानी टोटल भंग कितने हो गए उसकी बात चल रही है। ये संकलन के लिए ये बात बताते हैं। अब इन सभी के जघन्य स्थान से लाने की विधि का कथन करते हैं। अभी तक तो हमने वो आगे आगे वाला उसमें अनंत भाग मिलाना। अभी जघन्य स्थान से पहला स्थान लाना है, जघन्य स्थान से दसवा लाना है, जघन्य स्थान से सौवा लाना है, तो उसकी विधि बताएंगे। वह इस प्रकार है, प्रथम कांडक से अपवर्तित सब जीव राशि का विरलन करके जघन्य स्थान को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति कांडक प्रमाण सकल प्रक्षेप प्राप्त होते। ये कांडक यानी अनंत भाग वृद्धि कितनी बार हुए हैं तो उसको कहते हैं कांडक। हमें मालूम है सुचंगुल के असंख्यात भाग को यहाँ कांडक कहा, अभी हम कांडक ही कहेंगे उसको। तो ये जो सभी के सभी को लाना है ना, एक कांडक वाले कांडक बार वृद्धि हुई है, अभी सबको जघन्य स्थान के प्रमाण से करना है। तो पहले में पहले क्या करा, कांडक से अपवर्तित सब जीव राशि। अभी जीव राशि का विरलन नहीं करना है, जीव राशि डिवाइडेड बाय कांडक इसको तो विरलन करना, और जघन्य स्थान को उसमें समखंड करके देना। तो क्या होगा, एक एक अंग के प्रति कांडक प्रमाण सकल प्रक्षेप प्राप्त होते हैं। देखो अकेले जीव राशि का भाग देते तो एक प्रक्षेप आता, परंतु वो जीव जिस संख्या से भाग दिया था वो भागाकार का भागाकार गुणाकार के रूप में चला जाएगा। देखो हम 1000 को 20 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 50 आते हैं, और 20 को 5 से भाग देकर उसका भाग 1000 को देंगे तो 20 को 5 का भाग देने यहाँ 4 आ गए तो 250 संख्या आ जाएगी। यानी क्या हुआ, ये जो 50 है भागाकार का भागाकार वो गुणकार होता है, तो 50 × 5। वैसे ही यह हमने क्या किया है, जीव राशि डिवाइडेड बाय कांडक इस संख्या से जघन्य स्थान को भाग दिया, पहले हमने जगन्य स्थान को अकेले जीव राशि से भाग देते थे तो एक प्रक्षेप आता था, अभी एक प्रक्षेप मल्टीप्लाइड बाय कांडक का प्रमाण यानी कांडक प्रमाण प्रक्षेप आएंगे। ये बात क्लियर हुई? देखो कांडक प्रमाण सकल प्रक्षेप प्राप्त होते हैं, फिर इस विरलन के नीचे एक कम कांडक के अर्धभाग से अपवर्तित सब जीव राशि का विरलन कर क्या करना, कांडक में से एक कम करना और उसका अर्धभाग उससे अपवर्तित यानी जीव राशि को इतने से भाग देना है, उसका विरलन करना नीचे। ऊपरी विरलन के एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति एक कम कांडक के सकल संकलन प्रमाण पिशुल प्राप्त होते हैं। ये सभी जो अनंत भाग वृद्धि होती है उसके अंतिम स्थान पर पहुंचो, वहां क्या क्या वृद्धि होगी, अपनी भाषा में क्या होगा, प्रक्षेप कितने हो गए, तो कांडक प्रमाण प्रक्षेप होंगे, पिशुल कितने हो गए, कांडक माइनस वन का संकलन करना, इतने पिशुल हो गए, वही बात कहते हैं। एक एक अंक के ये विरलन की बात थोड़ी समझने में कठिन आती है, उन्हें तो पता है ना एक कम कांडक प्रमाण पिशुल चाहिए, उसके लिए जितना जरूरी है उतने का विरलन करके वो दे रहे हैं, उल्टा गणित ऐसा हम समझ लेते हैं। तो उसकी संख्या कैसे आवे, तो कहते कांडक में से एक कम करना, उसका आधा करना, जीव राशि का अपवर्तित करना और फिर ऊपर जो दिया था ना सकल प्रक्षेप कांडक प्रमाण प्रक्षेप उसको भाग देना, उतना हमें इतने प्रक्षेप वो संकलन धन निकालने के लिए जो कुछ विधि जरूरी है वो बता रहे हैं। हम तो डायरेक्ट एक कांडक माइनस एक का संकलन निकाल सकते हैं, उसको ही हमको समझना है, वो विरलन की बात थोड़ी कठिन होती है तो उसको हम गौण करेंगे। अभी उसकी पद्धति एक ही है कि उतना प्रमाण निकालने के लिए जिस विधि से आएगा उतना का विरलन करना और ऊपर की राशि उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हमें क्या चाहिए, एक कम कांडक प्रमाण उसका संकलन धन निकालना, इतने तो पिशुल लेना। देखो तीसरी लाइन में हमने देखा था कांडक प्रमाण सकल प्रक्षेप, अभी पांचवी लाइन के अंत में लिखा अंक एक एक अंक प्रति का है एक कम कांडक के संकलन प्रमाण पिशुल। अभी ये सब मिलाना है ना जघन्य स्थान में, बाद में जाके मिलाएंगे। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, पिशुला पिशुल चाहिए, वो कितने चाहिए, दो कम कांडक का दो बार संकलन, बराबर है ना, जो नीचे से दूसरी लाइन में देखो ऐसा देने पर एक अंक के प्रति दो कम कांडक के द्वितीय बार संकलन प्रमाण पिशुला पिशुल प्राप्त होते हैं। ये संख्या निकालने के लिए विरलन पद्धति अभी बता रहे हैं, अभी जहां से हम छोड़ा था वहां से पढ़ेंगे, नीचे से पांचवी लाइन में, फिर इस द्वितीय विरलन के नीचे एक कम कांडक के संतुलन से गुणित सब जीव राशि को दो कम कांडक के द्वितीय बार संकलन से अपवर्तित कर लब्ध का विरलन करके। देखो क्या कहते हैं, पहले वो संकलन निकालो उसको विरलन करो और फिर ऊपर का दे दो, एक ही बात है, हम डायरेक्ट तो निकाल सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा ये विरलन की बात नहीं ख्याल में आती है तो गौण करना, हमें तो कितने पिशुला पिशुल चाहिए उसकी बात यहां से हम देखेंगे। लब्ध का विरलन करके द्वितीय विरलन के एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर, अभी हमको कितना द्रव्य आया था तो पिशुल प्रमाण आया था, उसके नीचे अभी जो नया विरलन किया उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना विरलन किया, तो जो हमको संकलन निकालना है ना उतना ही विरलन किया है, तो प्रमाण तो उतना आने वाला है पिशुला पिशुल का। तो करके देने पर एक अंक के प्रति दो कम कांडक के द्वितीय बार संकलन प्रमाण पिशुला पिशुल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कांडक प्रमाण विरलन राशियों को जान करके विरलन करना चाहिए। उन्होंने अंतिम तो बता दिया, अभी हर एक के लिए ऐसा अलग अलग सभी जो जितनी राशियां होगी आगे आगे का विरलन करके, जैसे पिशुला पिशुल निकाले फिर चूर्णिका चूर्णी चूर्णिका वगैरह सब निकालना, उनमें चतुर्थ आदि विरलन राशियां चूंकि अप्रधान है अतएव उनको छोड़कर तृतीय द्वितीय और प्रथम प्रक्षेपांशों के लाने की विधि कहते हैं वह इस प्रकार है। यानी वो जो आगे के जो है ना चूर्णिका वगैरह वो तो गौण करेंगे, उसको उसका प्रमाण छोटा है, इसलिए जो प्रक्षेप पिशुल और पिशुलापिशुल उसकी बात करेंगे वह इस प्रकार है। एक अधिक तृतीय विरलन मात्र अध्वान जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो उपरिम विरलन में वह कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर एक अंक के कुछ कम दो तृतीय भाग आते हैं, उनको ये पूरे ही कांडक प्रमाण प्रक्षेप वगैरह उसकी बात ली थी ना, इसलिए उसकी भाषा में बोल रहे हैं। ये सब पूरा पढ़ेंगे तो ख्याल आएगा क्या कहते हैं। उनको मध्यम विरलन में से कम कर, हम तृतीय विरलन की बात की, फिर उसको मध्यम विरलन में से कम कर एक अधिक करके उससे फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करके प्राप्त हुए एक रूप के कुछ कम अर्ध भाग को उपरिन विरलन में से कम करना। नीचे जो विरलन आया था तीसरे में वो ऊपर बीच वाले विरलन में से कम किया, उसमें जो आया वो ऊपर वाले विरलन में से कम किया। ऐसे करने पर जघन्य भाग देने पर, जघन्य स्थान में भाग देने पर जो लब्ध हो उसे जघन्य स्थान को प्रतिराशि करके मिलाने पर चतुरंक के नीचे का उर्वंक स्थान होता है। यानी कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धि हुई तब जाके चतुरंक यानी असंख्यात भाग वृद्धि हुई थी, तो असंख्यात भाग वृद्धि के एक स्थान पहले वाला जो अंतिम अनंत भाग वृद्धि स्थान है जिसको हम कहते हैं कांडक प्रमाण हो गए ना वृद्धिया, तो कांडक का अंतिम स्थान, तो उसमें कांडक प्रमाण तो प्रक्षेप, एक कम कांडक का संकलन इतने बार तो पिशुल, और दो कम कांडक का दो बार संकलन इतने तो पिशुला पिशुल, बाकी अन्य भी समझना। इतने मिलाने पर जघन्य स्थान जो है वो कांडक के अंतिम स्थान जितना हो जाता है, ये बात यहां बताई। फिर उस स्थान को, क्योंकि वो कांडक के बार क्या होने वाला है असंख्यात भाग वृद्धि, तो जो अभी हमने स्थान निकाला कांडक का अंतिम स्थान, उस वहां के स्थान को असंख्यात लोकों से अपवर्तित कर। असंख्यात लोक क्यों लेना, क्योंकि अभी हमें असंख्यात भाग वृद्धि चाहिए, तो भाग देंगे और जो प्रमाण आएगा उसमें मिलाएंगे, जो अभी कांडक के अंत में जो स्थान देखा था उसमें मिलाएंगे असंख्यात, उसका असंख्यात भाग, तो असंख्यात भाग वृद्धि वाला पहला स्थान आएगा। तो असंख्यात लोकों से अपवर्तित कर प्रतिराशीकृत उसी में मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि स्थान होता है। यहां समझ में आया, ये विरलन की बात थोड़ी गौण करना, क्योंकि वो पहला विरलन दूसरा तीसरा उसका प्रमाण निकालने के लिए उन्होंने किया है। हम डायरेक्ट भी, हमको तो पद्धति समझनी है, डायरेक्ट भी हम सोचे तो समझ सकते हैं। अब जघन्य स्थान से असंख्यात भाग वृद्धि स्थान को उत्पन्न कराते हैं। पहले तो हमने जघन्य स्थान से एक एक अनंत भाग वृद्धि का स्थान कितने मिलाने हैं उसको देखा था। हमने देखा था कोई भी अनंत भाग वृद्धि का स्थान निकालना है तो उतने प्रमाण में प्रक्षेप मिलाना, एक कम उस गच्छ के एक बार संकलन करेंगे तो उसके तो पिशुल मिलाना, और दो कम करके दो बार संकलन इतने तो पिशुला पिशुल, आगे के भी यथायोग्य समझना। ये अनंत भाग वृद्धि निकालने के लिए। अब जघन्य स्थान से डायरेक्ट असंख्यात भाग वृद्धि स्थान जो है वो कितना बढ़ गया है उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसकी बात अब बताएंगे। यथा चतुरंक से और के ऊपर बिंदी लगाना, चतुरंक से नीचे के उर्वंक में से, अब यानी अंतिम कांडक का अंतिम स्थान, नीचे का उर्वंक यानी अनंत भाग वृद्धि का अंतिम स्थान, उसमें से कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धि प्रक्षेपों, एक कम कांडक के संकलन प्रमाण पिशुलों, दो कम कांडक के द्वितीय बार संकलन प्रमाण पिशुला पिशुलों तथा शेष चूर्णिक भागों को कम करने पर जघन्य स्थान होता है। अभी तक हमने जितनी मेहनत की थी और जितना मिलाने पर अंतिम स्थान आया था उस सबको माइनस करो तो जघन्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। इतनी बात बताई, यानी जितना मिलाया था उसके माइनस करेंगे तो जघन्य स्थान की वैल्यू आएगी। फिर असंख्यात लोगों का विरलन कर जघन्य स्थान को समखंड करके देने पर, अभी दूसरी भाषा में क्या करना है, जघन्य स्थान के कंपेयर में लेना है ना, तो बिना वृद्धि का अकेला जघन्य स्थान लेना, उसको भी असंख्यात लोक से भाग देना, और जितनी जितनी वृद्धि हुई थी उसको भी असंख्यात लोक से भाग देना, तो आगे दोनों को मिलाना तो आगे का स्थान आने वाला है। ये इतना ही करना है, अब उसको हम पढ़ेंगे। तो पहले में पहले जीव ये जघन्य स्थान को असंख्यात लोक से भाग देना है। अभी पहले हम जीव राशि को भाग देते थे क्योंकि वहाँ अनंत भाग निकालना था, अनंतवा भाग निकालना था ना, अभी असंख्यातवा भाग निकालना है। तो असंख्यातवा भाग लेने के लिए एक ही प्रमाण, वो असंख्यात लोक का, अलग अलग असंख्यात यहाँ नहीं चलेंगे। इसलिए क्या किया, उसको भाग देना कहो या उसको विरलन करके जघन्य स्थान उसमें डिस्ट्रीब्यूट करो कहेंगे तो ये एक बड़ी बात है। तो कहते हैं फिर असंख्यात लोगों का विरलन कर, नीचे से चौथी लाइन, जघन्य स्थान को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति असंख्यात भाग वृद्धि का प्रक्षेप होता है। ये प्रक्षेप आया, असंख्यात भाग वृद्धि का प्रक्षेप। पहले प्रक्षेप हमने निकाले थे वो अनंत भाग वृद्धि के प्रक्षेप थे। फिर पहले कम किए गए कांडक प्रमाण, अनंत भाग वृद्धि प्रक्षेप आदि को भी, जो जितना जितना हमने कम किया था ना, या कांडक के अंतिम स्थान के लिए जितना मिलाया था पहले वृद्धि का प्रमाण था, आदि को भी समखंड करके देने पर, इसको किस में समखंड करके देंगे, हाँ? नहीं, इसको भी असंख्यात लोक में, क्योंकि उसका भी असंख्यात भाग निकालना है ना, जितनी वृद्धि हुई थी उसका भी असंख्यात भाग निकालना है। देखो पहले हमने जघन्य स्थान को असंख्यात लोक में डिवाइड कर दिया, अब जो वृद्धि हुई थी यानी वो प्रीवियस उर्वांक में जितनी वृद्धि हुई थी टोटल, उसको भी असंख्यात लोक में डिवाइड करेंगे तो उसका भी वहां प्रमाण आएगा। अनंत आदि को भी समखंड करके देने पर यथा स्वरूप से प्राप्त होता है, यानी यथा योग्य उसका प्रमाण आएगा। अब इसके एक भागहार रूप से लाने की क्रिया करते हैं। अब सबका मिलकर एक भागहार बताएंगे, वह इस प्रकार है, असंख्यात लोगों का विरलन कर जघन्य स्थान को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति जघन्य ध दिख रहा है, जघन्य स्थान का असंख्यातवा भाग प्राप्त होता है। ये तो आसान है समझना, नहीं समझा तो बीच में रुकाना। फिर असंख्यात लोकों से अपवर्तित सब जीव राशि का नीचे विरलन कर उपरिम एक अंक के प्रति प्राप्त अ के ऊपर बिंदी, ऊपर एक अंक के प्रति क्या आया था, जघन्य स्थान का असंख्यात भाग आया था, उसको किसमें अभी विरलन करना है, जीव राशि डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक से, उसमें विरलन करना है। ऊपरी अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति एक एक अनंत भाग वृद्धि प्रक्षेप प्राप्त होता है। फिर कांडक से अपवर्तित उसे विरलित कर, एक एक अनंत भाग वृद्धि प्रक्षेप आए ना, तो फिर कांडक से अपवर्तित उसे विरलित कर ऊपरी में एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धि प्रक्षेप प्राप्त होते हैं। ये जो हमने माइनस किए थे उसी को लाना है बस, दूसरा कुछ नहीं है। अनंत भाग वृद्धि के कांडक प्रमाण हुए थे ना, क्योंकि आगे जाके उसको हमको असंख्यात लोक से भाग देना है। उसके लिए अलग अलग पद्धति से विरलन करके उसका प्रमाण लाया उन्होंने। फिर शेष रहे उनको भी लाने के लिए, शेष कौन रहे, पिशूल पिशूला पिशूल चुन्नी वगैरह सब लिए ना, उसको भी लाने के लिए भागार में से अनंतवे भाग व असंख्यातवे भाग को भी कम करना चाहिए। इसे उपरिम विरल अंकों के प्रति प्राप्त द्रव्यों में देकर समकरण करने पर हीन अंकों का प्रमाण बतलाते हैं, वह इस प्रकार है। एक अधिक विरलन मात्र अध्वान जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है, ये अंक के ऊपर बिंदी, जब जब हम नीचे विरलन करते हैं और ऊपर के विरलन वाला एक के प्रति प्राप्त राशि नीचे देते हैं, तो क्या होता है, वो एक की वैल्यू सब में डिस्ट्रीब्यूट हुई तो उसमें प्लस वन करके ऊपर का एक स्थान कम हो जाता है। इस तरह से उसकी हमेशा त्रैराशिक लिखते हैं, तो कहते हैं इतना जाने पर एक कम होता है, तो ऊपर के विरलन प्रमाण जाकर कितने हो गए, तो एक का अनंत भाग आएगा, कभी असंख्यात भाग आएगा, कभी ज्यादा भी आएंगे यथा योग्य जो प्रमाण है। देखो क्या कहते हैं, वह इस प्रकार है। उसके नीचे पढ़ती हूँ, नीचे से उसमें छठी लाइन। एक अधिक विरलन मात्र अध्वान जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है, तो उपरिम विरलन में वह कितनी पाई जाएगी, यह हमेशा का उनका त्रैराशिक है। क्योंकि उपरिम विरलन के एक के प्रति प्राप्त उन्होंने नीचे के अंकों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो नीचे जितने अंक है उसने में डिस्ट्रीब्यूट हुआ ऊपर का एक, तो उसमें और एक जाए तो ऊपर का एक कम हुआ, तो इतना अध्वान जाने कर ऊपर एक अंक की वह हानि होती है। तो ऊपर जितना विरलन है उसमें कितनी होगी, ये त्रैराशिक बेस समझना। हर बार इसी को रिपीट करेंगे वो। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर, यानी हम जैसे त्रैराशिक सॉल्व करते उस पद्धति से, एक अंक का अनंतवा भाग आता है। वैल्यू कितनी आई, एक का अनंतवा भाग आया उस, हाँ त्रैराशिक जो हमेशा हम कैसे, जैसे हम कहते हैं ना त्रैराशिक किसको कहते हैं, जैसे देखो 10 रुपए को 50 चीजें आती है कोई, तो 100 को कैसे कितने आएगी, तो ये राशि ऊपर आती है, ये नीचे चली जाती है और इससे गुणा करते हैं। ऐसे यहाँ समझना, एक अधिक नीचे का विरलन में एक स्थान की हानि, तो ऊपरन विरलन में जितने स्थान है उसमें कितने की हानि, तो वो एक का अनंतवा भाग आ जाता है। यहाँ तो एक इतना विरलन जाएगे तो एक की हानि, तो अमुक इतना जाएगा कि कितनी हानि होगी, तो इसका प्रमाण बड़ा है। मान लेते इसका अनंत अनंत गुणा है, इससे अनंत गुणा, तो ये एक ऊपर आएगा अनंत नीचे चला जाएगा, तो एक का अनंतवा भाग आ जाएगा। एक का अनंतवा भाग आता है, उसको उपरिम विरलन में से कम कर शेष का जघन्य करना, उसको जघन्य स्थान में भाग देने पर, ये भागहार निकालना था ना उनको, तो पहले जो भागहार था उसमें अभी जो अनंतवा भाग है वो फिर और कम करके भाग देने पर लब्ध को, अभी जो कुछ आया वहां पर उसको प्रतिराशिकृत जघन्य स्थान के ऊपर मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि स्थान होता है। हमने क्या किया, हमको असंख्यात वृद्धि जो स्थान पहला हुआ, जघन्य स्थान से कितना उसमें मिलाना है इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो जघन्य स्थान को हमने असंख्यात लोक से भाग दिया, और जितना कोई लास्ट उर्वंक में वृद्धि हुई थी उस सबका भी असंख्यात भाग निकाला असंख्यात लोक का, तो हमको टोटल वृद्धि जघन्य स्थान से कितनी हुई उसकी बात उसमें समझ में आ जाएगी। ये बात है, क्योंकि जो असंख्यातवी भाग वृद्धि हुई वो इमीडिएट पहले उर्वांक से कितनी हुई उसकी बात है, हमको जघन्य स्थान से निकालनी है। हाँ, इसलिए तो जितनी बीच में वृद्धि हुई थी उसका भी असंख्यातवा भाग, और जगन्य स्थान के भी असंख्यात भाग दोनों मिलाकर अभी वहां कहेंगे। ख्याल में है ना? उसके लिए ये लंबा चौड़ा गणित उन्होंने बताया है। यानी पहले तो असंख्यात लोग से भाग दिया था, अब वृद्धि को भी उतना करके उसमें उसके साथ उसको भी ले लेना है। इसलिए इसका जो भागार है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। असंख्यात लोक में से उसका एक का अनंतवा भाग थोड़ा कम करना है। असंख्यात लोक में से एक का अनंतवा भाग कम करना, इससे भाग देंगे तो असंख्यात वृद्धि का डायरेक्ट स्थान मिल जाएगा। यही बात यहां समझाई विरलन के द्वारा। अब इसके आगे कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धियों के उत्पन्न कराने की विधि जानकर कराना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसके आगे का कांडक प्रमाण वृद्धि का अर्थ क्या है? हाँ, उसके पश्चात देखो, पहले हमने देखा ना चार अनंत भाग वृद्धि एक कांडक बार हुई, तब एक बार असंख्यात भाग वृद्धि हुई। एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होने के पश्चात फिर एक कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होने वाली, तब दूसरी बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी। यही बताते हैं, द्वितीय असंख्यात भाग वृद्धि उत्पन्न कराने की विधि बताते हैं ना। हाँ, अभी उसके नीचे कहा, पहले तो कहा था इसके आगे कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धियों के उत्पन्न कराने की विधि जानकर कराना चाहिए। नहीं, उसमें जितनी जितनी वृद्धि हो गई, जो असंख्यात भाग वृद्धि का स्थान है उसका अनंतवा भाग बढ़ते चला जाएगा। अब डायरेक्ट दूसरे असंख्यात भाग वृद्धि स्थान का प्रमाण निकालना है हमको, तो क्या करेंगे? वही इस प्रकार है, उससे अधस्तन उर्वंक के ऊपर असंख्यात भाग वृद्धि और अनंत भाग वृद्धि प्रक्षेपों को कम करने पर शेष जघन्य स्थान होता है। क्या कहते हैं? अभी हमको दूसरा नंबर का चार निकालना है। दो बार चार हुआ ना, चतुरंक हुआ है ना, दो बार असंख्यात भाग वृद्धि हुई, तो दूसरी बार असंख्यात भाग वृद्धि हुई उसके एक स्थान पहला कौन सा था? अनंत भाग वृद्धि का। तो वहां पर क्या क्या बढ़ा था? असंख्यात भाग वृद्धि एक बार बढ़ चुकी थी और वो अनंत भाग वृद्धि भी दो बार कांडक हुए, पहले भी हुए अभी भी हुए, इतनी तो वृद्धि हुई। इस सबको अगर हम कम करेंगे तो जघन्य स्थान पर वापस चले जाते हैं, बैक टू नंबर वन अपना। अब कहते उसमें असंख्यात लोगों का भाग देने पर असंख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि एक ही बार हुआ था, एक ही बार हुई थी असंख्यात भाग वृद्धि, एक ही बार हुई थी। देखो अभी हम किस स्थान पर आए थे? दो कांडक हुए हैं, दूसरे कांडक के अंतिम स्थान में अभी तक कितनी वृद्धि हुई है? दो कांडक बार तो अनंत भाग वृद्धि हुई है और एक बार, अकेला एक बार असंख्यात भाग वृद्धि हुई है, क्योंकि अभी हम असंख्यात भाग वृद्धि के दूसरे स्थान पर आए हैं, कांडक नहीं हुए उसका, उस दूसरा स्थान है। तो उसमें अनंत भाग वृद्धि दो कांडक बार हो चुकी है और असंख्यात भाग वृद्धि एक, तो उसको जितना मिलाया था उतना कम करो, तो जघन्य स्थान पर गए हम वापस। जघन्य स्थान को असंख्यात लोक से भाग देते हैं तो असंख्यात भाग वृद्धि वाला प्रक्षेप मिलेगा। जब अनंत भाग से जीव राशि से भाग देते तो अनंत भाग वृद्धि का प्रक्षेप मिलता था। डायरेक्ट जघन्य स्थान के कंपेयर में देख रहे ना हम, और असंख्यात लोक से भाग देते हैं तो असंख्यात भाग वृद्धि का प्रक्षेप मिलता है। ये बात समझ में? तो देखो यही बात कहते हैं अंतिम लाइन 164 पृष्ठ पर, उसमें असंख्यात लोगों का भाग देने पर असंख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप प्राप्त होता है। ये समझ में आया? हाँ। उसको पृथक स्थापित कर उसको तो अलग रखेंगे हम, क्योंकि प्रक्षेप मिला नहीं ना, अभी दो बार मिलाएंगे। पहले असंख्यात भाग वृद्धि के लिए एक प्रक्षेप मिलाया था, दूसरे के लिए और एक असंख्यात भाग वृद्धि वाला प्रक्षेप मिलाएंगे। परंतु जितनी सारी पहले हमने वृद्धियां कम करके उस स्थान पर गए थे ना वापस, यानी दूसरे चार के पहले वाला ऊप, वहां जितनी कुछ वृद्धि हुई थी उसके भी असंख्यात भाग निकालना है। प्रक्षेप तो जगन्य स्थान की अपेक्षा असंख्यात भाग मिला दिया, परंतु अभी तक की जितनी वृद्धि हुई थी उसका भी असंख्यात भाग निकालना है। उसके लिए भी असंख्यात लोक से उसको भी भाग देंगे। उस स्थान पर जितने कुछ पिशुल हो गए, पिशुला पिशुल हो गए, जो कुछ लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, जितना कुछ बढ़ा है उस सबके अनंतवान है टोटल का असंख्यात भाग, कौन सा वो लोक असंख्यात लोक वाला असंख्यात का भाग वो निकालना है, तभी हमको दूसरी बार के असंख्यात वृद्धि का प्रमाण मिलेगा, वहां का स्थान मिलेगा। हाँ, टोटल करने से। हाँ, तो अभी उसकी को पढ़ेंगे, अभी बीच में विरलन वाला सब आएगा फिर भी। हाँ, विरलन में बहुत विरल हो जाते देखो फिर पढ़ती पहली लाइन 165 पृष्ठ पर, इसको पृथक स्थापित कर। अभी हमने ये जो प्रक्षेप निकला है वो तो अभी अलग रखा है। फिर क्या कहा, कम किए गए प्रक्षेपों में चूंकि अनंत भाग वृद्धि प्रक्षेप अप्रधान है, अतएव उनको छोड़कर असंख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप को असंख्यात लोक से खंडित करने पर उसमें से एक खंड असंख्यात भाग वृद्धि पिशुल होता है। क्या कहे, अभी अनंत भाग वृद्धि को गौण कर दिया, असंख्यात भाग वृद्धि हुई थी ना एक बार, तो एक बार असंख्यात भाग वृद्धि हुई थी यानी वो असंख्यात भाग वृद्धि का प्रक्षेप था। असंख्यात भाग वृद्धि वाले प्रक्षेप को असंख्यात लोक से भाग देंगे तो असंख्यात भाग वृद्धि वाला पिशुल होगा, अकेला पिशुल अभी नहीं कहेंगे उसको। पहले तो हम कहते प्रक्षेप को जीव राशि से भाग दिया तो पिशुल आया था, परंतु वो अनंत भाग वृद्धि वाला पिशुल और अनंत भाग वृद्धि वाला प्रक्षेप था। अब यहाँ वैल्यू बदल गई है, प्रक्षेप भी बड़ा है क्योंकि असंख्यातवा भाग है ना, पहले अनंतवा भाग था, अभी असंख्यातवा भाग है, ये प्रक्षेप है, उसको भी लोक का असंख्यात लोक से भाग देंगे उसको भी, तो असंख्यात भाग वृद्धि वाला पिशुल मिलेगा। तो अभी दूसरे स्थान पर क्या मिलेगा, दो प्रक्षेप असंख्यात भाग वृद्धि के, दो प्रक्षेप और असंख्यात भाग वृद्धि वाला एक पिशुल मिलेगा, क्योंकि अनंत भाग वृद्धि जितनी वृद्धि हुई तो उसको गौण कर दिया है यहाँ पर। देखो उसमें से एक खंड असंख्यात भाग वृद्धि पिशुल होता है, यहां समझ में आई ये बात। इस पिशुल और पूर्व के प्रक्षेप को ग्रहण कर अंतिम उर्वंक को प्रतिराशि करके मिलाने पर द्वितीय असंख्यात भाग वृद्धि स्थान उत्पन्न होता है। पिशुल एक ही बार, क्योंकि असंख्यात भाग वृद्धि अभी दोबारा ही हुई, दूसरी बार हुई है। हाँ, पद्धत वही है, वहां भी प्रक्षेप निकालते थे। हाँ, वहां जीव राशि का भाग था और यहाँ लोग असंख्यात लोक का भाग है, पद्धत वही है। प्रक्षेप को विशिष्ट भाग, अभी हम कहेंगे विशिष्ट भागार जिस किसी में एप्लीकेबल हो, तो प्रक्षेप डिवाइडेड बाय भागार पिशुल आएगा, पिशुल डिवाइडेड बाय वही भागार पिशुला पिशुल आएगा, ये पद्धत वही होगी। जगन्य स्थान वाला बहुत बड़ा अनंत है आएगा ना, अभी कितनी बार, बिल्कुल। बहुत बड़ा है मगर असंख्यात भाग के आगे कुछ नहीं है, और हमको गणित समझाना है उसको गौण नहीं, नहीं तो पहले जगन्य स्थान में मिला देते। जगन्य स्थान में नहीं मिलाया, उसके पहले वाले उर्वांक में मिलाया है, ख्याल आता है ना, है तो बड़ा, परंतु अभी इतना समझते समझते पसीना छूट रहा है, तो उसको भी दे दो ना भाग, हर एक को दे दो, जितना वृद्धि हमके तो समझना है ना, जितनी वृद्धि है उसको असंख्यात लोक से भाग दे दो। परंतु जो अनंतवा भाग है, बढ़ते बढ़ते भी असंख्यात वह भाग जितना बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में उसको गौण करके गणित समझाने के लिए ये पद्धति अपनाई। यह जघन्य स्थान की अपेक्षा, अभी दूसरी बार असंख्यात भाग वृद्धि हुई है तो जघन्य एकदम ओरिजिनल स्थान की अपेक्षा दो असंख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेपों और एक पिशुल से, पिशुल के भी लिए वो विशेषण लगाया, असंख्यात भाग वृद्धि वाला पिशुल, एक प्रक्षेप और एक पिशुल बढ़ा ना। अभी यहां पढ़ने से पहले हम देखेंगे तीसरी बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी, प्रक्षेप कितने बढ़ेंगे, तीन प्रक्षेप, पिशुल, पिशुल तीन बढ़ेंगे, तीसरा स्थान है ना, तीसरा स्थान है एक कम तीसरा स्थान, यानी दो का संकलन करना, यानी तीन आए, तीन पिशुल बढ़ेंगे, एक पिशुला पिशुल, ख्याल है, यही अभी बढ़ेंगे मैं आगे। हाँ संख्या तो अभी वो पढ़ेंगे अभी सर। तो कहते अधिक होता है, इतने से अधिक होता है, यानी जघन्य स्थान की अपेक्षा अभी जो हमने ऐड किया ना, दो प्रक्षेप और एक पिशुल, असंख्यात भाग वृद्धि वाला समझना। तो शंकाकार पूछता है यह अधिक द्रव्य जघन्य स्थान के कितने वे भाग प्रमाण हैं? और यही लिखा उतने वे कितने वे जितने वे, भाषांतर, भाषांतर के लिए हमें शब्द चाहिए था। वो जो ढूंढारी भाषा है ना, केथवा कहते हैं, केथवा भाग, जेथवा भाग, तेथवा भाग, तो उसके हिंदी में क्या करना, जितने वे तितने वे कितने वे। वो कोई हिंदी वाला समाधान नहीं कर सके। हाँ मराठी में कितवा कहते हैं, ये मराठी और ढूंढारी बहुत सिमिलर है, बहुत से उसमें जो है ना शब्द है, हमने थे इसमें एक कटोरी में हम क्या कहते हैं, कितना उसमें समाया जाता है, अभी इसको हमने दाल से भर दिया तो इसमें कितना भर जाता है, तो मराठी में कितनी माँ होता है, और उसमें भी माई है, ऐसे माई ही कहते हैं, बहुत सारे शब्द मराठी से सिमिलर है। ये हिंदी में भाषा यानी वाक्य रचना अलग पद्धति से होती है, मराठी जैसी उसकी बहुत बार मिलजुल जाती है। देखो शंका, यह अधिक द्रव्य जो हमने मिलाया ना कि दो प्रक्षेप और एक पिशुल मिलाया, ये जो एक्स्ट्रा मिलाया है वो जघन्य स्थान की अपेक्षा उसका कितने वा भाग है, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं कि असंख्यात लोकों का विरलन कर जघन्य स्थान को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति एक असंख्यात वृद्धि प्रक्षेप प्राप्त होता है। अभी ये तो विरलन समझ में आ गया, ऐसा है असंख्यात भाग वृद्धि का प्रक्षेप हमने इसी पद्धति से निकाला था कि पूरी जघन्य स्थान डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक। पुनः चूंकि दो प्रक्षेप अभिष्ट है, अभी उसके लिए क्या करेंगे, दो हाँ भागाकार का आधा करेंगे, यानी विरलन आधा करेंगे। दो प्रक्षेप अभिष्ट है अतः पूर्व के भागाहार के अर्ध भाग का भाग देने पर एक अंक के प्रति दो दो प्रक्षेपों का प्रमाण आता है, ये भी समझ में आवे ऐसा है। पुनः इसके ऊपर एक असंख्यात भाग वृद्धि पिशुल का लाना अभिष्ट है। अभी जो प्रक्षेप आया था पहले के एक एक के प्रति एक एक प्रक्षेप आया था, और फिर हमने भागार आधा किया तो दो दो प्रक्षेप आए, और अभी हमको एक पिशुल चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, अभी वो पिशुल कितने, वो प्रक्षेप है वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना, एक प्रक्षेप है वो असंख्यात लोक में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हाँ तो दो प्रक्षेप है तो दो गुना उसमें कर, दो गुना असंख्यात लोक में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हाँ, पिशुल का प्रमाण, तब दो दो प्रक्षेपों को दो पिशुल आएंगे ना, हमको एक प्रक्षेप का असंख्यात भाग निकालना है। देखो पढ़ेंगे, पुनः इसके ऊपर एक असंख्यात भाग वृद्धि पिशुल का लाना अभिष्ट है, हम चाहते हैं। अतः पूर्व विरलन के नीचे दुगुणे असंख्यात लोकों का विरलन कर, दो प्रक्षेपों को दो गुणे असंख्यात लोकों में बांट देंगे। अपनी भाषा में एक प्रक्षेप को एक बार असंख्यात लोकों में बांट दो तो एक पिशुल आ जाएगा। ये भागहार देने जितना विरलन आसान है, ख्याल है ना। दुगुने असंख्यात लोगों का विरलन कर, उपरिम एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को, कितना प्राप्त था, दो प्रक्षेप थे वहां पर, समखंड करके देने पर एक एक पिशुल का प्रमाण प्राप्त होता है। अभी ये समझ में है ना, यहाँ तो कुछ ऊपर नीचे देना नहीं है, केवल भागहार से हमको उसकी संख्या लानी है। भागहार के बदले विरलन की भाषा में बात करते हैं। फिर एक अधिक इस विरलन प्रमाण जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती, ये जरा समझने में कठिन पड़ता है ना। देखो ऊपर का एक प्रक्षेप निकाला और हमने नीचे के सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऊपर से एक निकाला, दो ऊपर एक, क्या एक के प्रति क्या था, दो प्रक्षेप थे और उसको नीचे दो बार असंख्यात लोक में डिस्ट्रीब्यूट किया था, यानी वहां से एक निकाल लिया और दो बार असंख्यात लोकों में बांट दिया डिस्ट्रीब्यूट, तो उतने स्थान जाने पर वहां का एक की हानि होती है। तो ऊपर के विरलन कितने थे, आधे ही थे असंख्यात लोक से, तो उतने जाने पर कितनी होगी, तो 1/4 से कुछ कम हो जाएंगे। देखो हम पढ़ेंगे, कितनी पाई जाएगी, इस प्रमाण फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर एक अंक का कुछ कम चतुर्थ भाग आता है, क्योंकि वहां भागार आधा था, यानी वहां भागार के अर्ध भाग प्रमाण विरलन था, अभी भागार के दो गुना विरलन है, तो दो गुना से आधा कितना हुआ, 1/4 हुआ, यही बात है। उसको कुछ कम क्यों कहा, क्योंकि वो जो दो दो एक्स समझ ने, 2x थे, 2x प्लस 1 में एक की हानि, तो x बाय 2 में कितनी हानि। देखो भागार हमका दो गुना था ना, 2x प्लस 1, इसमें एक स्थान की हानि होती है, तो x बाय 2 में कितनी होगी, तो कैसे करते, x डिवाइडेड बाय अभी इसमें भी 2x प्लस 1 ऐसा होगा ना। तो अगर हम ये एक्सेस भी निकाल जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो ये भागहार में चला जाता है, इसलिए कुछ कम 1/4 से कुछ कम हो जाएगा। इसको अभी ये 1/4 में कुछ कम है ना, इसको ऊपर के उसमें से कम करना, माइनस करना, इसको उपरिम विरलन में से कम करने पर जो शेष रहे वह भागहार होता है। अब ऊपर का जो भागहार था उसमें इसको भी माइनस कर देना, भागहार में से इसका जघन्य स्थान में भाग देने पर दो प्रक्षेप और एक पिशुल प्राप्त होता है। ये डायरेक्ट उन्होंने दो प्रक्षेप और एक पिशुल कौन से भागहार से निकलेंगे, हाँ वो भागहार में से भागहार कम किया, हम डायरेक्ट अलग अलग भागहार देंगे तो भी वही प्रमाण आने वाला है। इसको जघन्य स्थान में प्रतिराशि करके मिलाने पर, जघन्य स्थान में दो प्रक्षेप और एक पिशुल मिलाने पर द्वितीय असंख्यात भाग वृद्धि स्थान उत्पन्न होता है। अभी समझ में आया ना, असंख्यात भाग वृद्धि, फिर इसके आगे इसके बाद क्या होगा, अभी फिर अनंत भाग वृद्धि एक कांडक बार हो गई, तभी तीसरी बार असंख्यात भाग वृद्धि हो जाएगी। इसके आगे कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धि स्थानों के अंतिम उर्वंक स्थान तक सब जीव राशि भागार होकर जाती है। इसके आगे जो स्थान आए ना, अभी दूसरी बार असंख्यात भाग वृद्धि हुई, उसको भी जीव राशि से भाग देना, ये जो स्थान आया था अंतिम, फिर कांडक बार उसका अनंत भाग वृद्धि वृद्धि वृद्धि, फिर उसका अंत स्थान हो जाएगा, उसके आगे तीसरी बार असंख्यात भाग वृद्धि, पुनः इसके ऊपर के तृतीय असंख्यात भाग वृद्धि स्थान का कथन करने पर अभी क्या करना पड़ेगा, पहले वो क्या करेंगे कहेंगे, उसके पहले वाला जो उर्वंक था उसमें से जितनी वृद्धि मिलाई थी उसको माइनस करके बैक टू जघन्य स्थान वहाँ चले जाएंगे। अभी अपनी भाषा में कहेंगे तीसरा स्थान है असंख्यात भाग वृद्धि का, तो असंख्यात भाग वृद्धि वाला जो प्रक्षेप है, मूल जघन्य स्थान को असंख्यात लोक से भाग देने पर उसका प्रक्षेप आता है, तो तीन बार तो प्रक्षेप रखेंगे। अभी तीसरा स्थान है ना, तो पिशुल कितना बार रखेंगे, तीन बार, दो का संकलन करना, तो तीन तीन हो जाएंगे असंख्यात भाग वृद्धि के पिशुल, और पिशुला पिशुल भी एक रखना पड़ेगा, इतना सब रखेंगे जघन्य स्थान के कंपैरिजन में। अभी जैसे हमने द्वितीय स्थान की बात है वैसे यहां पढ़ेंगे। अभी देखो ऊपर के तृतीय असंख्यात भाग वृद्धि स्थान का कथन करने पर अंतिम उर्वंक के ऊपर के असंख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप को कम करके पृथक स्थापित करने पर जघन्य स्थान होता है। उसमें से खाली असंख्यात भाग वृद्धि को ही कम कर दिया उन्होंने, दो बार हुई थी ना उसमें, उतनी बार अनंत भाग वृद्धि की हुई थी उसको गौण कर दिया है समझाने के लिए, क्योंकि यहां अनंत भाग वृद्धि प्रक्षेप को प्रधान नहीं किया गया है, वो है वहां पर फिर भी अभी उसकी बात नहीं उठा रहे। फिर असंख्यात लोगों का जघन्य स्थान में भाग देने पर एक प्रक्षेप आता है, कौन सा प्रक्षेप आता है, असंख्यात भाग वृद्धि वाला प्रक्षेप आता है, इसको पृथक स्थापित करके फिर पूर्व के क के ऊपर एक मात्रा देना, असंख्यात लोकों से ही, यानी भागार तो वही है ना, दो प्रक्षेपों के अपहृत करने पर दो असंख्यात भाग वृद्धि पिशुल आते हैं। क्या कहना चाहते हैं, एक प्रक्षेप को एक बार असंख्यात लोक से भाग देंगे तो एक पिशुल आया, तो दो प्रक्षेपों को भाग दिया तो दो पिशुल आ गए। इनको पृथक स्थापित करके उसी भागार से असंख्यात भाग वृद्धि पिशुल को खंडित करने पर क्या आएगा, अभी एक पिशुला पिशुल, एक पिशुला पिशुल आता है। देखो ये दो बार ही पिशुल निकाले, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक पहली बार हमने एक पिशुल मिलाया था, तो यहां एक प्रक्षेप दो पिशुल और एक पिशुला पिशुल लिया एक्स्ट्रा, जो पहले मिलाए थे वो उसमें, क्योंकि वो पहले वाले उर्वंक में इसको हम मिलाएंगे, पहले ऑलरेडी वहां दो असंख्यात भाग वृद्धि मिलाए थे और एक पिशुल ऑलरेडी मिलाया था, अब इन एडिशन क्या मिलाने जाने वाले हैं, एक प्रक्षेप और मिलाएंगे और दो पिशुल मिलाएंगे और एक पिशुला पिशुल में एक्स्ट्रा। देखो असंख्य दो असंख्यात हुए, एक पिशुला पिशुल आता है, यहां तक हुआ ना, अब एक असंख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप उसी वृद्धि के दो पिशुल, उसी वृद्धि के का अर्थ क्या है देवेंद्र भाई, उसी वृद्धि का अर्थ क्या है, कौन से वृद्धि की बात चल रही है यहां पर, असंख्यात भाग वृद्धि संबंधी दो पिशुल, अनंत भाग वृद्धि के पिशुलों की संख्या उसकी वैल्यू अलग है, उसका प्रमाण अलग है, दो पिशुलों और एक पिशुला पिशुल को ग्रहण कर, अब ये एडिशनल है ना, ये सारे किस में डालना, अंतिम उर्वंक को प्रतिराशि करके मिलाने पर, ये जघन्य स्थान में नहीं मिलना, जघन्य स्थान में मिलाना होता तो तीन प्रक्षेप तीन पिशुला पिशुल और एक पिशुल मिलाते, अब यहां लास्ट उर्वंक के ऊपर मिलाना है तो उसमें ऑलरेडी वो एक बार असंख्यात भाग वृद्धि ये दो प्रक्षेप उसमें ऑलरेडी थे और एक पिशुल भी ऑलरेडी था, अब यहां एक्स्ट्रा क्या मिलाना है, एक प्रक्षेप दो पिशुल और एक पिशुला पिशुल, तो अंतिम उर्वंक को प्रतिराशि करके मिलाने पर तृतीय असंख्यात भाग वृद्धि स्थान होता है। तृतीय असंख्यात भाग वृद्धि स्थान, अभी जघन्य की अपेक्षा कहेंगे तो जघन्य स्थान की अपेक्षा, अब यहां बता रहे तीन असंख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेपों, तीन असंख्यात भाग वृद्धि पिशुलों, और एक पिशुला पिशुल से अधिक है, उसके लिए भी वो असंख्यात भाग वृद्धि वाला विशेषण जोड़ दो, चलेगा। वहाँ अलग प्रक्षेप नहीं निकालते, प्रक्षेप का असंख्यात भाग बढ़ गया ऐसा कहेंगे, डायरेक्ट जघन्य स्थान से आगे के प्रक्षेप गिनते हैं, उसको पिशुल कहेंगे हम। आगे आगे वो पहले वाला इसीलिए एडिशनल जितनी है ना, एडिशनल वृद्धि जितनी हुई थी उसका भी असंख्यात भाग निकाल रहे हम, उसको अलग नाम दिए हैं। ओरिजिनल जो वैल्यू थी जघन्य स्थान की, उसके असंख्यात भाग का प्रमाण उसको प्रक्षेप कहा, एडिशनल वृद्धि है उसके फिर पिशुल पिशुला पिशुल चूर्णी उसके आगे बहुत नाम दे दिए। देखो कैसे गणित की पद्धति थी उस अब जघन्य स्थान से इस अधिक द्रव्य को उत्पन्न कराते हैं। अब ये जितना समझाना इसी को अभी विरलन में समझाएंगे अभी पढ़ेंगे, पद्धति ख्याल में आई है इतना ही, क्योंकि इतने इतने पिशुल निकालने के लिए किसका विरलन करना पड़ेगा इसको सोचकर ही तो बताया है। पहले हमको वैल्यू मिल गई है किसकी, अनंत असंख्यात भाग वृद्धि होने वृद्धि की बात, वृद्धि की बात चल रही। अरे बढ़ रहा है, आप किसके प्रक्षेप से पिशुल की वैल्यू पूछ रहे हैं? बहुत बढ़ गई वृद्धि। देखो वृद्धि तो असंख्यात भाग तो बढ़ा है, वृद्धि के भी असंख्यात भाग बढ़ा है, ये चक्रवार व्याज है, व्याज के ऊपर भी व्याज होता है ना। अरे वो एडिशनल है, इन एडिशन है, वो अकेले पिशुल नहीं बढ़ता है, प्रक्षेप तो बढ़ता ही है, प्रक्षेप के इन एडिशन में पिशुल भी बढ़ा। देखो पहले स्थान में अकेला प्रक्षेप बढ़ा, दूसरे स्थान में एक प्रक्षेप और एक पिशुल बढ़ा, तीसरे स्थान में और एक प्रक्षेप इन एडिशन, एक प्रक्षेप दो पिशुल एक पिशुला पिशुल बढ़ा, ये बढ़ रहे, बढ़ने की बात है यहाँ पर, वृद्धि के ही स्थान है ये सब, क्योंकि जितनी वृद्धि हुई उसका भी असंख्यात भाग बढ़ेगा कि नहीं। ये पद्धति ख्याल में आई कि नहीं, इतनी बात है अभी, वो विरलन के बात जितना समझ में आवे उसको। हाँ पहले जघन्य स्थान की अपेक्षा निकाला है ना, हाँ तो हमको कितने प्रक्षेप चाहिए, तीन प्रक्षेप चाहिए। हाँ अभी विरलन करेंगे असंख्यात लोक का तीसरा भाग और उसमें जघन्य स्थान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डायरेक्ट तीन प्रक्षेप मिलेंगे, हमको डायरेक्ट तीन पिशुल चाहिए तो तीन प्रक्षेपों को तीन गुना करेंगे, उस भागार को तीन गुना करेंगे और फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें तीन पिशुल की वैल्यू आएगी और पिशुला पिशुल एक चाहिए तो इन प्रपोर्शन उस उतना विरलन करेंगे, अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये विरलन से डरने की बात नहीं है, अभी इसको पढ़ेंगे अभी। यथा असंख्यात लोकों के तृतीय भाग का विरलन करके, आपने अभी डिराइव किया था ना, अभी तो हमको तीन प्रक्षेप चाहिए तो जो राशि डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो वन थर्ड में करेंगे तो तिगुणा राशि आएगी, हमको प्रक्षेप तीन मिलेंगे। जघन्य स्थान को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति तीन तीन प्रक्षेपों का प्रमाण प्राप्त होता है। फिर इस अभी दूसरा विरलन करेंगे, इस विरलन के नीचे असंख्यात लोकों का विरलन कर एक अंक के प्रति प्राप्त तीन प्रक्षेपों को ग्रहण कर समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति तीन तीन पिशुल प्राप्त होते हैं, क्योंकि वहां तीन प्रक्षेप थे और उसको असंख्यात विभाग से भाग दिया तो तीन पिशुल मिल गया। फिर इस द्वितीय विरलन के नीचे अभी हमको पिशुला पिशुल निकलना है, अभी नीचे और आए तिगुणे असंख्यात लोगों का विरलन करके, पिशुल हमको एक ही चाहिए, ऊपरी एक अंक के प्रति प्राप्त तीन तीन पिशुलों को ग्रहण कर समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति एक एक पिशुला पिशुल प्रमाण होता है। ये तो आसान है ना, ऊपर तीन थे उसको उतने में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे असंख्यात लोक में, तो एक एक आ गया उसका। पुनः एक अधिक इस विरलन प्रमाण जाकर, ये यही त्रैराशिक, एक अधिक इतना जाएंगे तो यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो मध्यम विरलन में वह कितनी पाई जाएगी। मध्यम विरलन असंख्यात लोक का था, पहला विरलन 1/3 था, मध्यम वाला पूरा असंख्यात लोक था और तीसरा भी उतना ही था। तो एक अधिक असंख्यात लोक जाकर एक स्थान की हानि प्राप्त, तो असंख्यात लोक जाकर कितनी होगी, ये एक का कुछ कम हो जाएगा ना, कितनी होगी। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर एक अंक का कुछ कम एक तृतीय भाग आता है, फिर इसको मध्यम विरलन में से कम करके, अभी ये जो कम आया उसको मध्यम विरलन में कम कर देना है, शेष रहे उससे एक अधिक मात्रा अधवान जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है। अब ये बीच वाले ही ऊपर विरलन से ऊपर के विरलन में चले जाएंगे उसके साथ कंपेयर, इतने जाके एक हानि होती है तो इतने में कितनी होगी, तो ऊपरी विरलन में कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित करने पर एक अंक का कुछ कम तृतीय भाग आता है, फिर इसको ऊपरी विरलन में से कम करना है। जघन्य स्थान में भाग देने पर डायरेक्ट अभी मिलेगा पूरा भागहार, डायरेक्ट मिलेगा। पहले हमने क्या किया, तीन प्रक्षेप निकाले, फिर उसको असंख्यात विभाग से भाग दिया असंख्यात लोक से, तो फिर तीन पिशुल मिले थे और एक ही एक पिशुला पिशुल चाहिए सबका। उन्होंने विरलन के द्वारा एक भागहार लाया तो उस भागहार से डायरेक्ट जीव राशि को, सॉरी जघन्य स्थान को भाग दिया तो हमको ये तीनों ही मिल गए। अभी अभी थोड़ा थोड़ा ख्याल में आता है ना। हाँ, भाग देने पर तीन प्रक्षेप, तीन पिशुल और एक पिशुला पिशुल आता है। भले हम उसको डिराइव नहीं, परंतु वो क्या कहना चाहते उतनी तो बात ख्याल में आती है। पुनः इसको जघन्य स्थान के ऊपर मिला देने पर तृतीय असंख्यात भाग वृद्धि स्थान होता है। इस बीज पद से, ये उन्होंने मेथड बता दी इसको बीज पद का, अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धि स्थानों में अंतिम असंख्यात भाग वृद्धि स्थान तक ले जाना चाहिए। उन्होंने तो तीन बताए, तो ऐसे असंख्यात भाग वृद्धि स्थान कितने बार होते हैं, अंगुल के असंख्यात वे भाग बार, जिसको एक कांडक बार कहेंगे हम। सूचंगुल कहो या अंगुल कहो, एक ही अंगुल यानी एक सिंगल लाइन में उसको सूची अंगुल कहते हैं, और अंगुल गुणा अंगुल उसको प्रतरांगुल कहते हैं, और अंगुल गुणा अंगुल गुणा अंगुल को घनांगुल कहते हैं। तो सूचंगुल कहो या अंगुल कहो एक ही बात है। तो अंगुल यानी असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी की जितने समय है उतनी संख्या इसमें अंगुल के असंख्यात विभाग में है। अंगुल का प्रमाण हमको बहुत कम लगता है। देखो पल अधा पल्ले तो हमने देखा, विरूप घनधार में अधा पल्ले आता है, ये पल्ले जिसको हम कहते हैं कॉमनली, वो भी व्यवहार पल्ले वाली पल्ले नहीं बात, अधा पल्ले की बात है। तो उसके आगे कितने ही असंख्यात स्थान चले जाते हैं, जितने स्थान पर जाकर पल्ले आया था, पल्ले आने के लिए भी बहुत स्थान गए थे। द्विरूप मालूम है ना, द्विरूप वर्ग धारा, 4 का वर्ग 16 का वर्ग 256, इस तरह से करते 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 कितने ही संख्यात स्थान चले गए, तभी वो जगन्य परिता संख्यात वाली वर्गशाला का आई, फिर वो आगे आगे उसके अर्धच्छेद आए, फिर वो स्वयं उसका स्थान आया, फिर ऐसे बहुत सा आगे चले गए तो आवली आई जगन्य युक्ता संख्यात, फिर उसके कितने ही असंख्यात स्थान आगे जाने पर पल्ले आया। पल्ले में भी पहले उसकी वर्गशाला का, फिर असंख्यात स्थान जाने पर उसके अर्धच्छेद, फिर असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले का वर्गमूल, और फिर एक स्थान आगे पल्ले, यानी कितनी बार बीच में असंख्यात बार वर्ग 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 करते हैं। तो जितनी टोटल स्थान गए हैं पल्ले लाने के लिए उतने ही स्थान आगे चले जाएंगे, वर्ग वर्ग पल्ले का वर्ग 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 करके, तब जाके अंगुल का प्रमाण आएगा। अंगुल इतना बड़ा है, तो ये असंख्यात भाग वृद्धि भी इतनी बार हो जाएगी। अंगुल के असंख्यात भाग बार, उतनी बार यानी एक कांडक बार। अविभाग प्रतिच्छेद, अविभाग प्रतिच्छेद अनंत जो है वो केवल ज्ञान के है, उससे आगे कोई संख्या नहीं है, केवल ज्ञान के अविभाग। हर एक के अविभाग प्रतिच्छेद अपने अलग अलग होंगे। हाँ, हर एक केवल के नहीं, केवल ज्ञान के अकेले के अलग है। जैसे अगुरु लघु गुण के उससे छोटा वाला अनंत है, जीव द्रव्य के अगुरु लघु गुण में ज्यादा अनंत, बड़ा अनंत है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का अगुरु लघुत्व गुण में छोटे अनंत वाला अविभाग प्रतिच्छेद है। हरेक के अपने अपने अविभाग प्रतिच्छेद अलग है। ये कर्मों की शक्ति भी अविभाग प्रतिच्छेदों में नापते हैं, उसके भी अपने अलग है। अभी कर्मों की बात छोड़ो, हमने केवल ज्ञान का देखा था ना अनंत, अब मिनिमम ज्ञान कौन सा है, पर्याय वाला, उसमें भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है। पर्याय ज्ञान में जो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है ना, तो ज्ञान में तो बहुत है, वो तो अगुरु लघु गुण की बात की नहीं मैंने, उससे भी उसमें अनंत है। ये सूक्ष्म निगोदिया में इतनी ज्ञान की शक्ति है। यहां हमें क्या लेना है, वो संख्या का थोड़ा पता चले ना, इसलिए ये बात बीच में उठाए। अंगुल का असंख्यात्व भाग, पहले हमने सूत्र पढ़े थे ना, अंगुल के असंख्यात्व भाग में असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी होती है। अवसर्पिणी उत्सर्पिणी हम समयों की संख्या बताते हैं और यहाँ प्रदेशों की संख्या बताते हैं, ख्याल है ना। तो प्रदेशों की अपेक्षा संख्या को ही बताना है, और वहां भी काल की अपेक्षा संख्या को ही बताना है। इसको उपमा मान कहते हैं, उपमा देकर उसका एहसास करें ना, वो संख्या का। संख्या कौन सी है, असंख्यात ही है, दोनों ही असंख्यात संख्या को बताने वाले हैं, उसकी वैल्यू अलग अलग है। उसके अपने अपने होते हैं। अभी ये सारा जो हम वेदना भाव विधान देख रहे हैं, वो सारा अनुभाग की बात चल रही है, जगन्य स्थान की बात चल रही है, कर्मों की बात चल रही है सारी। आपको नो कर्म की बात पूछ रहे हैं, उसके उसमें अपने में है, इसके साथ उसके कंपेयर नहीं करना। हर एक के अपने अपने अविभाग प्रतिच्छेद है बस। हर गुण में चलेंगे वो अविभाग प्रतिच्छेद, हर गुण के पर्याय में। अभी आप कहते हैं औदारिक शरीर के जो परमाणु हैं, उसमें भी स्पर्श गुण है, रस गुण है, गंध गुण है, वर्ण गुण है। अभी हर एक के समझना। हाँ, अभी यहाँ तो फल देने की अपेक्षा से चल रही है। और उसमें खाली वो स्पर्श रस गंध वर्ण ही नहीं, उसमें भी अगुरु लघु गुण है, उसमें भी अन्य अन्य गुण है, उसमें भी षट स्थान वृद्धि वो वाली वो बात उसमें भी चलती है। अभी श्रुत ज्ञान भी कितना जानेगा, फिर भी श्रुत ज्ञानियों ने इसकी रचना की थी, तो पहले 12 अंग वाले कितने जानते थे। केवल ज्ञानी का ज्ञान क्या होगा, कहाँ होती है। हाँ, वो राग की अधिकता के कारण। ऐसी बात नहीं है, यानी वो उस जमाने में वो तो जीव अपना पुरुषार्थ करते थे ना, उतने पुरुषार्थ ही। अभी ऐसे ही जीव यहाँ जन्म रहे, ऐसे सहज निमित्त नैमित्तिक है संबंध। काल के लिए हमारा कुछ पुरुषार्थ कम पड़ रहा है ऐसी बात नहीं है। ये तो सहज ऐसे होते हैं। अभी ऐसे काल में भी कुछ जीव होंगे कि नहीं जो मुनि योग्य भी पुरुषार्थ करते हैं, तो काल से होता है तो उनका भी राग बढ़ना चाहिए था, तो उनके भी मुनि योग्य तो पुरुषार्थ इस काल में भी होता है सातवें गुणस्थान तक का। अभी श्रेणी का नहीं हो सकता, पर वहां तक का हो सकता है ना। ये काल की अपेक्षा उसका कथन आता है कि अभी ये यहाँ के जीवों की ऐसी इतनी योग्यता, ये बताने के लिए कहते हैं काल के लिए। काल कुछ नहीं करता।
देखिए, कोई भी द्रव्य को अन्य काल, अन्य क्षेत्र, अन्य द्रव्य के भाव कुछ नहीं करेगा। इतनी प्रत्येक द्रव्य में स्वतंत्रता है, इस बात को हम उसका खूंटा पकड़ के रखते हैं तो फिर ये तो निमित्त का कथन है कि भाई काल के कारणवश ऐसा ऐसा होता है।
काल के सापेक्ष कथन किया जाता है।
हाँ, वो निमित्त का संयोग की बात है।
तो भोग भूमि में तो राग की कमी थी ना, तो वहां के जीव कहाँ जाते हैं? स्वर्गों में जाते हैं। मोक्ष क्यों नहीं जाते? पांचवा गुणस्थान योग्य पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हैं? ये हर एक की वो तो काल की अपेक्षा वहां कैसी क्या बनती है पोजीशन, उसकी बात है। अब बढ़ेंगे आगे, चलो। मैं बहुत विषयांतर हुआ है क्या, विलर्न कर करके बहुत टेंशन आया था ना। अब अंतिम असंख्यात भाग वृद्धि स्थान के भागार को कहते वो इस प्रकार है। 168 पर आए ना अभी हम। कहते अंगुल के असंख्यातवे भाग से असंख्यात लोगों को अपवर्तित कर। अभी हमको कहां तक जाए? एक कांडक मार असंख्यात भाग वृद्धि हुई है, उसका प्रमाण निकालना है। तो अंगुल के असंख्यातवे भाग कारण, क्योंकि वो कांडक का प्रमाण है, उससे असंख्यात लोगों को अपवर्तित कर कुछ कम करके जघन्य स्थान में भाग देने पर जो लब्ध हो उसमें, यानी डायरेक्ट कांडक प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धि के प्रक्षेप आ जाएंगे। और क्या आएगा? एक कम कांडक के संकलन प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धि पिशुल आ जाएंगे। यहां कॉमा लगाना। और पिशुला पिशुल कितने आ जाएंगे? दो कम कांडक के संकलना संकलन, दो बार संकलन करते हैं ना, उसके लिए कहते हैं संकलना संकलन प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धि पिशुला पिशुल, और शेष चूर्ण आते हैं। चूर्णिका कहो, चूर्ण कहो, यानी आगे के जो उन्होंने बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट बताई वो सारे समझ लेना उसमें। इस सबको ग्रहण करके जघन्य स्थान के ऊपर मिलाने पर अंतिम असंख्यात भाग वृद्धि स्थान उत्पन्न होता है। अनंत भाग वृद्धि के लिए भी ऐसे ही उन्होंने, पर उसका जो अपना प्रक्षेप, अपना पिशुल, अपना पिशुला पिशुल अलग था। हाँ, पुनः इसके आगे सब जीव राशि भागार होकर अंतिम अनंत भाग वृद्धि स्थान तक कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धि स्थान आते हैं। क्या कहते हैं? यानी ऊ चार और ऊ चार हो गया, अब फिर अनंत भाग वृद्धि के स्थान आ जाएंगे एक कांडक बार। फिर इसके आगे प्रथम संख्यात भाग वृद्धि स्थान होता है। देखो ऊ चार यानी चार वो कांडक बार है ना, फिर ऊ होकर पांच आएगा, तो बीच में एक कांडक बार अनंत भाग वृद्धि आती है। देखो फिर इसके आगे प्रथम संख्यात भाग वृद्धि स्थान होता है। अब उसके प्रमाण को करेंगे ऐसा ही। इसको उत्पन्न कराने में अब क्या करेंगे? उसके पहले वाला ऊ था, उसमें से जितनी वृद्धि है उसको सबको बात करेंगे, तो जाएंगे फिर जघन्य स्थान पर। फिर उसमें कितना मिलाना है? संख्यात भाग वृद्धि करनी है, तो संख्यात से भाग देंगे। तो प्रक्षेप आएगा। कौन से वाले संख्यात से भाग? उत्कृष्ट संख्यात से। वो उत्कृष्ट संख्यात क्या है? वो जघन्य परिता संख्यात में माइनस वन करके जो निकलती है वो वैल्यू। वो कैसे निकाला था? वो चार कुंड बनाए थे ना, वो चक्कर आई थी अपने को वहां पर आते तो छोड़ देते पढ़ना। देखो इसको उत्पन्न कराने में अंतिम अनंत भाग वृद्धि स्थान के ऊपर वृद्धि प्राप्त द्रव्य को कम करने पर जघन्य स्थान होता है। अब उत्कृष्ट संख्यात का विरलन करके हमको जो जघन्य स्थान को उत्कृष्ट संख्यात से भाग देना है। यहाँ विरलन की भाषा में उत्कृष्ट संख्यात को विरलन करेंगे और जघन्य स्थान को उसमें समखंड करके देंगे। देखो जघन्य स्थान को समखंड करके देने पर संख्यात चाहिए यहाँ, है ना? क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी हम संख्यात भाग वृद्धि देख रहे हैं ना, संख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप आता है क्योंकि हमने उत्कृष्ट संख्यात में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। ऊपर नीचे के पैराग्राफ में तीसरी लाइन प्राकृत में समखंडम कादुन जिन्ने संख्यज भाग वड्डी प्रक्षेवो आगच्छदी। ऊपर का पहेजे प्रूफ तो समझ में आने, ये संख्यात भाग वृद्धि ही होना चाहिए। प्रक्षेप आता है, कम किए हुए प्रक्षेपों को संख्यात अंकों से अपवर्तित करने पर जो लब्ध हो वह अप्रधान है। हाँ, जो द्रव्य लब्ध हो। ऊपर है ना लद्द दव्वम अपहानम, आपके पुस्तक में नहीं है? क्योंकि वह संख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। क्या कहते हैं? कम किए हुए प्रक्षेपों को, अभी जो लास्ट उर्वंक में से जो हमने कम किए थे ना सारे, जितना मिलाया था वृद्धि का प्रमाण वो सबको कम कर दिया था, और उसको अपवर्तित करके जो लब्ध आएगा उसको यहाँ गौण कर दिया है। क्योंकि संख्यात्व भाग के आगे वो असंख्यात्व भाग कहाँ चला गया? तो जो द्रव्य लब्ध हो वह अप्रधान है क्योंकि संख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप के असंख्यात्व भाग प्रमाण है। इसको लाते समय नीचे असंख्यात लोकों का विरलन कर संख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति असंख्यात, फिर असंख्यात आया विरलन में किसको दिया था? संख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप को, वत्स अनंत असंख्य। नीचे असंख्यात लोगों का विरलन कर संख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप को समखंड, अच्छा असंख्यात लोक का विरलन कर दिया समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति असंख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप का संख्यात भाग प्राप्त होता है। ठीक है, अब चूंकि सकल प्रक्षेप का लाना अभिष्ट है अतः असंख्यात लोकों को उत्कृष्ट संख्यात से अपवर्तित कर लब्ध का विरलन करके संख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप को समखंड कर देने पर विरलन अंक के प्रति असंख्यात भाग वृद्धि का सकल प्रक्षेप प्राप्त होता है। पुनः कांडक प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेपों की चूंकि इच्छा है अतएव एक कांडक से इस समय की विरलित राशि को अपवर्तित करके विरलित कर संख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप को समखंड करके देने पर कांडक प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप विरलन अंक के प्रति प्राप्त होते हैं। ये बीच में कांडक प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप हुए थे, उसको भी रखना है, तो इसलिए उसको लाने के लिए उन्होंने उसका विरलन के द्वारा उसका प्रमाण लाया है। यानी बीच में असंख्यात भाग वृद्धि हुई थी और अनंत भाग वृद्धि हुई थी, वो कितने बार हुई थी उसका प्रमाण यहाँ लाया। उसके आगे पिशुला पिशुल उसको भले गौण करेंगे, परंतु वो प्रक्षेप कितने थे, तो असंख्यात भाग वृद्धि कितने बार हुई, तो एक कांडक बार हुई थी, तो एक कांडक प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धि वृद्धि के प्रक्षेप आएंगे। अभी अनंत भाग वृद्धि कितने बार हुई है, कांडक का वर्ग प्लस एक कांडक, क्योंकि ऊ चार फिर ऊ पांच, तो ऊ और चार के लिए एक कांडक हुआ, और फिर ऊ चार ये दूसरा नहीं है, कांडक बार हुआ है, यानी वर्ग हो गया उसमें। जब असंख्यात भाग वृद्धि का एक कांडक होता है, तब अनंत भाग वृद्धि का कांडक का वर्ग हो जाता है, परंतु उसके बाद फिर एक कांडक होके फिर संख्यात भाग वृद्धि होगी, इसलिए उसको वर्ग प्लस एक कहेंगे। कांडक का वर्ग प्लस एक बार, यानी वन प्लस कांडक का वर्ग, इतनी बार अनंत भाग वृद्धि हुई है, ख्याल आता है। हाँ, असंख्यात भाग वृद्धि एक कांडक बार हुई, अनंत भाग वृद्धि कांडक का वर्ग प्लस और एक बार, और एक कांडक, एक बार भी नहीं, एक कांडक बार। देखो फिर चौथी लाइन, पुनः कांडक सहित कांडक के वर्ग प्रमाण है ना, क्या हुए, अनंत भाग वृद्धि प्रक्षेपों के लाने की इच्छा है। अभी वो लाएंगे, वो विरलन करेंगे, बताएंगे हमें क्या लाना है, इतनी बार होता है इतना ही समझना है। अब कहते हैं, अतएव कांडक से गुणित सब जीव राशि का विरलन कर, कांडक प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेपों को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति अनंत भाग वृद्धि प्रक्षेप का असंख्यातवा भाग प्राप्त होता है। अब चूंकि अनंत भाग वृद्धि का सकल प्रक्षेप अभिष्ट है, हमको पूरा इस प्रक्षेप चाहिए, उसका असंख्यात भाग नहीं, अतएव असंख्यात लोकों द्वारा कांडक से गुणित सब जीव राशि का अपवर्तन कर विरलन करके मध्यम विरलन के एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर एक अंक के प्रति सकल प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। हमें तो उसका प्रक्षेप निकालना है अनंत भाग वृद्धि का, उसके लिए उन्होंने विरलन अलग अलग प्रकार से करके उसका भाग निकाला, फिर उसे कांडक सहित कांडक के वर्ग से अपवर्तित करके विरलित कर मध्यम विरलन के एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर कांडक के साथ कांडक वर्ग प्रमाण अनंत भाग वृद्धि प्रक्षेप होते हैं। फिर समीकरण करके हीन अंकों का प्रमाण बतलाते हैं, यानी डायरेक्ट उनको भागार निकालना है, इसलिए ये लंबी चौड़ी विरलन राशि बता रहे हैं। एक अधिक अधस्थन विरलन जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है, ये हमेशा का उनका समीकरण ऐसा ही होता है, तो मध्यम विरलन में कितने अंकों की हानि पाई जाएगी, विरलन यानी भागहार की संख्या में कितनी कटौती होगी। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर एक अंक का अनंतवा भाग आता है, उसको माइनस करना पड़ेगा मध्यम विरलन में से, इसको मध्यम विरलन में से कम करके जो शेष रहे, अभी वहां जितना रहा ना, ये मध्यम विरलन की बात है, फिर वहां कहेंगे जो शेष रहे उसमें एक अंक और जाके एक स्थान की हानि होती है, तो ऊपरी विरलन में कितनी होती है, तो फिर उसमें से भी वो उतना कम करके भागार निकालेंगे। जो शेष रहे उससे एक अधिक जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है, तो ऊपरी विरलन में वह कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर एक अंक का असंख्यात्वा भाग पाया जाता है, इसको उत्कृष्ट संख्यात में से कम करके, क्योंकि पहले विरलन किया था हमने उत्कृष्ट संख्यात को, यानी उसमें ये बाकी जो उसके लिए उसका असंख्यात भाग और उसमें से कम करना है, ये नया भागार होगा। शेष का जगन्य स्थान में भाग देने पर अभी डायरेक्ट हमको मिलेगा, क्या क्या मिलेगा? एक संख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप, वो तो एक ही बार हुई ना, पहली बार संख्यात भाग वृद्धि हुए तो एक उसका प्रक्षेप, कांडक प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप, अकेले प्रक्षेपों को लिया है, और कांडक सहित कांडक के वर्ग प्रमाण अनंत भाग वृद्धि प्रक्षेप पाए जाते हैं। इतने द्रव्य को जघन्य स्थान को प्रतिराशि कर उसमें मिलाने पर चाहिए। पुनो इत्यदवम जहन्नठानम परिराशिय पक्षित्ते, उसमें मिलाने पर एक शब्द डालना, हाँ, मिलाने पर प्रथम संख्यात भाग वृद्धि स्थान उत्पन्न होता है। देखो यहाँ केवल प्रक्षेपों को लिया है, आगे पिशुलों को, पिशुला पिशुलों को छोड़ दिया है, वो दूसरे स्थान में संख्यात वो उसका पिशुल समझ निकालेंगे, परंतु पहले वाले जो है उसको गौण कर दिया अभी। यहाँ अनंत भाग वृद्धि की उर्वंक संज्ञा अब यहाँ आकर बता रहे, पहले तो हमने समझा था, हाँ, असंख्यात भाग वृद्धि की चतुरंक यानी चार अंक, संख्यात भाग वृद्धि की पंचांक, संख्यात गुण वृद्धि की षडंक यानी छह अंक, असंख्यात गुण वृद्धि की सप्तांक और अनंत गुण वृद्धि की अष्टांक संज्ञा जानना चाहिए। ये इसको कहते ना, उसका वो चिन्ह है सेनानी। इस संज्ञा से एक षट्स्थान संदृष्टि की योजना करनी चाहिए। अब यहाँ प्रकृत का कथन करते हैं, यानी अभी तक हमने क्या देखा, चार यानी ऊ यानी अनंत भाग वृद्धि देखी, चार यानी असंख्यात भाग वृद्धि देखी, और पांच यानी संख्यात भाग वृद्धि। तो यहाँ कहते हैं इस संज्ञा से, यानी एक षट्स्थान होता है ना, षट स्थान में वो आठ तक हो जाते हैं सारे, ऊ से लेकर आठ तक हो जाते हैं, छह स्थान वृद्धि के, छह स्थान उसको कहते हैं एक षट स्थान। तो ये जो संज्ञा अभी हमने देखी ना, ऊ चार पांच छह सात आठ, तो उस संज्ञाओं के द्वारा एक षट स्थान की संदृष्टि की योजना रचना करनी चाहिए। ये जो यंत्र बनाते हैं संदृष्टि का, इन्हीं इस चिन्हों के द्वारा उसको बनाना चाहिए। अब यहाँ प्रकृत का कथन करते हैं, उसके पहले पहले शंकाकार कुछ पूछ रहा है, इस शंका समाधान कर लेनी पड़ेगी, एक मिनट बाकी है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आता नहीं, इतना विरलन का डर नहीं लगता है, क्यों, एक क्या करना निकालना चाहते उसके बाद पहले ही समझ में आए तो वो विरलन को कैसे निकालना वो ख्याल आता है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन भाई,